अध्याय 5 कैन और हाबिल का परीक्षण। ये अध्याय उत्पत्ति 4 आयत 1 से 5 पर आधारित है। कैन और हाबिल आदम के पुत्र चरित्र में अत्यंत भिन्न थे। हाबिल में परमेश्वर के प्रति निष्ठा की भावना थी। उसने सृष्टिकर्ता के पतित मानव जाति के प्रति व्यवहार में न्याय और दयालुता को देखा और मुक्ति की आशा को कृतज्ञता से स्वीकार किया। लेकिन कैन ने उपद्रव की भावनाओं को पनपने दिया और आदम के पाप के फलस्वरूप धरती और मानव जाति पर श्राप की घोषणा के कारण परमेश्वर के प्रति असंतोष प्रकट किया। स्वयं की पदोन्नति की अभिलाषा कर और ईश्वरीय न्याय और अधिकार पर संदेह कर उसने अपने विवेक को उसी मार्ग पर चलने दिया जिस पर चलकर शैतान का पतन हुआ था। इन भाइयों को परखा गया जैसे इनसे पहले आदम को परखा गया था, ये प्रमाणित करने के लिए कि वे परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उसमें विश्वास करेंगे या नहीं। उन्हें मनुष्य के उद्धार संबंधित प्रयोजन से परिचित कराया गया। उन्हें परमेश्वर द्वारा नियुक्त भेंट चढ़ाने की विधि बताई गई। उन्हें मालूम था कि भेंट के द्वारा उन्हें उद्धारकर्ता में विश्वास की अभिव्यक्ति करनी थी, साथ ही क्षमा के लिए उस पर निर्भरता को स्वीकार करना था, और उन्हें ये भी ज्ञात था कि अपने उद्धार की ईश्वरीय व्यवस्था से सहमत होकर वे परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होने का प्रमाण दे रहे थे। रक्त के बहाए जाने के बिना पापों से छुटकारा असंभव था, और अपने पशुओं के समूह के पहलौठों की बलि चढ़ाकर उन्हें प्रायश्चित रूपी मसीह के रक्त में अपने विश्वास की प्रतीति करनी थी। इसके अलावा खेत के पहले फलों को धन्यवाद की भेंट के रूप में परमेश्वर को अर्पित करना था। दोनों भाइयों ने एक समान वेदियों का निर्माण किया और दोनों भेंट लेकर आए। हाबिल ने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार पशु की बलि चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। स्वर्ग से अग्नि प्रवाहित हुई और भेंट को जला डाला। लेकिन कैन ने परमेश्वर की प्रत्यक्ष और स्पष्ट आज्ञा की अवमानना करते हुए फलों की भेंट चढ़ाई। स्वर्ग से स्वीकृति का कोई संकेत नहीं आया। हाबिल ने अपने भाई से विनती की कि वह परमेश्वर द्वारा निर्धारित विधि से उससे आग्रह करे, लेकिन उसके अनुनय ने कैन को स्वयं की इच्छा का अनुसरण करने को दृढ़ कर दिया। सबसे बड़ा होने के नाते उसे लगा कि वो अपने भाई के परामर्श से ऊपर है और उसने उसकी सलाह का तिरस्कार किया। बलिदान जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी और बलि की भेंटों के संदर्भ में कैन अपने हृदय में संदेह और श्रद्धाहीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया। उसकी भेंट में पापों के प्रायश्चित की अभिव्यक्ति नहीं थी। उसे लगा, जैसा कि आज भी बहुतों को लगता है, कि परमेश्वर की निर्धारित समुचित योजना के पालन करने से अपनी दुर्बलता की स्वीकृति देने जैसा होगा और अपने उद्धार का माध्यम पूर्णतया उद्धारकर्ता के प्रायश्चित में विश्वास करने जैसा होगा। उसने आत्मनिर्भरता का मार्ग चुना। वो स्वयं की योग्यता लिए आएगा। वो न ही मेमने को लाएगा और न ही उसके रक्त को भेंट में मिलाएगा, बल्कि वो अपने फल, अपने श्रम की उपज लाएगा। अपनी भेंट को परमेश्वर पर एहसान करने जैसे चढ़ाकर वो ईश्वरीय स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा था। कैन ने आज्ञा के अनुसार वेदी बनाई, आज्ञा के अनुसार भेंट लाया, लेकिन उसका आज्ञा पालन अधूरा था। एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता का आभास, जो सबसे अनिवार्य भाग था, छोड़ दिया गया था। धार्मिक शिक्षा और जन्म के संदर्भ में दोनों भाई बराबर थे। दोनों पापी थे और दोनों इस बात से सहमत थे कि परमेश्वर आदर और आराधना योग्य है। बाहर से उनका धर्म एक निश्चित सीमा तक समान था, लेकिन इसके परे उनमें बहुत मतभेद था। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, इब्रानियों 11 आयत 4। हाबिल ने उद्धार के महान सिद्धांतों को ग्रहण किया। उसने स्वयं को पापी माना और उसने पाप और उसकी दंडाज्ञा मृत्यु को अपनी आत्मा और परमेश्वर से संगति के बीच खड़े हुए देखा। वो बलिदान हेतु मारा हुआ पशु लेकर आया और इस तरह उसने उल्लंघन की गई आज्ञा के आरोप को स्वीकार किया। बहाए हुए रक्त के माध्यम से उसने भविष्य में होने वाले बलिदान की कल्पना की, मसीह का कलवरी के कूस पर मरना। प्रायश्चित, जिसका होना निर्धारित था, में विश्वास करते हुए उसने धर्मी होने की गवाही दी और उसकी भेंट स्वीकार हुई। कैन को भी हाबिल के समान इस सत्य को सीखने और स्वीकार करने का अवसर मिला। वह एक पक्षीय उद्देश्य का शिकार नहीं था। एक भाई परमेश्वर द्वारा स्वीकृत होने के लिए मनोनीत नहीं था और दूसरा अस्वीकृत होने के लिए मनोनीत नहीं था। हाबिल ने विश्वास और आज्ञा पालन को चुना और कैन ने अविश्वास और उपद्रव को चुना। यह संपूर्ण विषय स्पष्ट है। कैन और हाबिल संसार में समय के अंत तक अस्तित्व में रहने वाली दो श्रेणियों को दर्शाता है। एक श्रेणी पाप के लिए नियुक्त बलिदान का लाभ उठाती है और दूसरी श्रेणी अपनी योग्यता पर निर्भर होने का प्रयत्न करती है। उनके बलिदान में ईश्वरी मध्यस्थता के सद्गुण का अभाव होता है और इसलिए वह मनुष्य और परमेश्वर का मेल नहीं करा सकता। केवल यीशु की सामर्थ्य के माध्यम से हमारी अवज्ञा की क्षमा प्राप्ति हो सकती है। जिन्हें मसीह के खून की आवश्यकता का आभास नहीं होता, जिन्हें लगता है कि ईश्वरीय अनुग्रह के अभाव में वे अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की स्वीकृति पा सकते हैं, वे वही गलती करते हैं जो कैन ने की थी। यदि वे पवित्र करने वाले रक्त को ग्रहण नहीं करते, वे दंडाज्ञा के अधीन है। कोई भी अन्य प्रयोजन नहीं है जिससे मनुष्य को पाप के दासत्व से छुटकारा मिले। संसार का अधिक भाग उपासकों का वह वर्ग है जो कैन के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। लगभग प्रत्येक मिथ्यावादी धर्म इसी सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य उद्धार के लिए स्वयं के प्रयत्नों पर निर्भर कर सकता है। कुछ का यह भी कहना है कि मानव जाति को उद्धार की नहीं, विकास की आवश्यकता है। वह स्वयं को शुद्ध करने, बौद्धिक व नैतिक स्तर पर उठाने और अवस्था सुधारने में सक्षम है। जैसे कैन ने सोचा कि रक्त रहित बलिदान की भेंट से ईश्वरीय स्वीकृति प्राप्त कर सकता है, वैसे ही यह वर्ग पश्चाताप के बिना मानवता को ईश्वरीय मानक तक उठाने की अपेक्षा करता है। कैन का इतिहास ऐसी भेंट के परिणाम बताता है। वह बताता है कि मसीह से अलग मनुष्य क्या रूप धारण करेगा। मानवता स्वयं को पुनः उत्पन्न करने में असमर्थ है। वह ईश्वरत्व की ओर ऊपर नहीं जाती, वरन शैतानियत की तरफ नीचे को आती है। मसीह ही हमारी एकल आशा है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरे नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सच्चा विश्वास, जो पूर्णतया मसीह पर निर्भर करता है, परमेश्वर की समस्त अपेक्षाओं की आज्ञाकारिता में प्रकट होगा। आदम के समय से वर्तमान समय तक महान संघर्ष परमेश्वर की आज्ञा के पालन से संबंधित है। सभी युगों में ऐसे मनुष्य रहे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान्यता न देकर भी उसका उनके पक्ष में होने का अधिकार चाहते थे। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और आज्ञा पालन के कर्मा के अभाव में विश्वास मृत है। याकूब 2:22-17। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। यूहन्ना 2:4। जब कैन ने देखा कि उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई, तो वह परमेश्वर और हाबिल पर क्रोधित हुआ। वह परमेश्वर पर क्रोधित हुआ क्योंकि उसने धर्मानुसार विधिवत बलि के एवज में मनुष्य का विकल्प स्वीकार नहीं किया, और कैन से इसलिए क्रोध हुआ कि बजाय उपद्रव में उसका साथ देने के उसने परमेश्वर का कहना माना। कैन के पवित्र आज्ञा की अवमानना करने के बावजूद परमेश्वर ने उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा, बल्कि उस मनुष्य के साथ तर्क वितर्क करना स्वीकार किया जिसने स्वयं को इतना अविवेकपूर्ण प्रमाणित किया था। और परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? एक स्वर्गदूत संदेशवाहक द्वारा ईश्वर की चेतावनी दी गई थी, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। चुनने का अधिकार कैन के पास था। यदि वह प्रतिशुद्ध उद्धारकर्ता की सामर्थ्य में विश्वास रखता और परमेश्वर की अपेक्षाओं में खरा उतरता, तो परमेश्वर उसके पक्ष में होता। लेकिन यदि वह अविश्वास और आज्ञा उल्लंघन में बना रहता, उसके पास आरोप का आधार न होता, क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा अस्वीकृत होता। लेकिन अपने पाप का अंगीकार करने के बजाय कैन परमेश्वर के अन्यायी होने का आरोप लगाता रहा और हाबिल के प्रति ईर्ष्या और घृणा को पालता रहा। उसने क्रोध में अपने भाई को भला बुरा कहा और उसे परमेश्वर के उनके प्रति व्यवहार संबंधी वाद विवाद में घसीटने का प्रयत्न किया। यद्यपि नम्रता से पर निडर और दृढ़ होकर हाबिल ने परमेश्वर की अच्छाई और न्यायप्रियता का समर्थन किया, उसने कैन की गलती की ओर संकेत किया और उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने आप में गलत था। उसने कैन और उसके माता पिता को परमेश्वर द्वारा तत्कालिक मृत्युदंड के बजाय जीवन दान देने में परमेश्वर की दयालुता की ओर संकेत किया और दृढ़तापूर्वक अनुनय किया कि परमेश्वर उनसे प्रीति रखता है, नहीं तो उसने उनकी दंडाज्ञा को भुगतने के लिए अपने पवित्र और निष्पाप पुत्र को नहीं दिया होता। इस सबसे कैन और भी उत्तेजित हुआ। तर्क और अंतरात्मा ने उसे हाबिल के सही के पक्ष में होने का संकेत दिया, लेकिन वो इस बात से क्रोधित हुआ कि जो अपने भाई की सलाह मानने का अभ्यस्त था, अब वही उसके असहमत होने की कल्पना कर रहा था, और ये कि उसे उसके विद्रोह में हाबिल से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। कैन ने घृणा की और अपने भाई को मार डाला, किसी गलत कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यूहन्ना 3:12। इसी तरह हर युग में दुष्टों ने स्वयं से श्रेष्ठतर मनुष्यों से घृणा की है। हाबिल का आज्ञाकारिता और अडिग विश्वास से पूर्ण जीवन कैन के लिए चिरस्थायी निंदा थी। यूहन्ना 3:20 में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परमेश्वर के निष्ठावान सेवकों के चरित्र से प्रतिबिंबित ईश्वरीय प्रकाश जितना अधिक प्रज्वलित होता है, उतनी ही अधिक स्पष्टता से अधर्मी मनुष्यों के पाप उजागर होते हैं और उनकी शांति भंग करने वालों का विनाश करने के उनके प्रयत्न और भी दृढ़ हो जाते हैं। परमेश्वर ने घोषणा की थी कि स्त्री के बीज और सर्प शैतान व उसकी प्रजा और मसीह व उसके अनुयायियों के बीच शत्रुता का वास होगा, और हाबिल की हत्या इसका पहला उदाहरण थी। शैतान ने मनुष्य के पाप के माध्यम से मानव जाति पर नियंत्रण पा लिया था, लेकिन मसीह मानव को इस योग्य बनाता है कि वो शैतान के दमनकारी शासन से छुटकारा पा सकें। जब भी परमेश्वर के मेमने में विश्वास द्वारा कोई आत्मा पाप के कार्य करना छोड़ देता है, शैतान का क्रोध भड़क उठता है। हाबिल के पवित्र जीवन ने शैतान के दावे का कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना असंभव है, खंडन किया। जब कैन ने दुष्ट की आत्मा से प्रभावित होकर देखा कि वो हाबिल पर नियंत्रण नहीं पा सकता, तो वो रोष से भर गया और उसने अपने भाई के जीवन का अंत कर दिया। और जहां भी परमेश्वर की व्यवस्था की धार्मिकता को प्रमाणित करने लोग खड़े होंगे, वहां उनके विरुद्ध इस भावना को प्रकट किया जाएगा। यही वो भावना है जिसने हर युग में खूंटे को गाड़कर मसीह के अनुयायियों के लिए ज्वलंत ढेर को सुलगाया है। लेकिन यीशु के अनुयायी पर थोपी गई यातनाएं शैतान और उसकी सेना द्वारा प्रारंभ की गई है, क्योंकि वो उसे अपने अधीन करने के लिए विवश नहीं कर पाया। ये एक पराजित शत्रु का रोष है। यीशु से संबंधित सत्य व धर्म के लिए मरने वाला हर मनुष्य विजयी होकर मरा। प्रकाशित वाक्य 12:11-9 में भविष्यवक्ता कहता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर, वो पुराना सर्प इबलीस और शैतान, जयवंत हुए और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हत्यारे कैन को अपने अपराध के स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया। परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और कैन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कैन पाप में इतनी दूर चला गया था कि उसे परमेश्वर की परस्पर उपस्थिति, उसकी महानता और उसके सर्वज्ञानी होने का आभास ही नहीं रहा। इस कारण अपने अपराध बोध को छिपाने हेतु उसने झूठ का सहारा लिया। परमेश्वर ने कैन से फिर कहा, ये तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने कैन को अपने पाप को स्वीकार करने का अवसर दिया था। उसके पास चिंतन करने का समय था। उसे अपने द्वारा किए गए कृत्य की गंभीरता और उसे छिपाने के लिए बोला गया झूठ ज्ञात थे, लेकिन अभी भी वो उपद्रवी था और अब दंडाज्ञा को विलंबित नहीं किया गया। जो पवित्र वाणी निवेदन और परामर्श में सुनाई पड़ती थी, उसी ने कठोर शब्दों में उच्चारण किया, इसलिए अब तू उस भूमि की ओर से शापित है जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर खाना बदोश और भगोड़ा होगा। इसके बावजूद कि दंडाज्ञा कैन के अपराध का परिणाम थी, दयालु सृष्टिकर्ता ने उसके प्राण नहीं लिए और उसे पश्चाताप का अवसर प्रदान किया, लेकिन कैन केवल अपने हृदय को कठोर बनाने हेतु, ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध उपद्रव को बढ़ावा देने हेतु और निर्भीक परित्यक्त पापियों के वंश का मुखिया बनने के लिए जीवित रहा। यही एक अधर्मी शैतान के नेतृत्व में दूसरों के लिए प्रलोभन देने वाला सिद्ध हुआ, और उसके उदाहरण और दुष्प्रभाव ने नीति भ्रष्ट करने वाली प्रवृत्ति को प्रवाहित किया, जब तक कि धरती इतनी विकृत और क्रूरतापूर्ण हो गई कि उसका विनाश करना पड़ा। प्रथम हत्यारे को प्राणदान देने में परमेश्वर ने समस्त सृष्टि के सम्मुख महान संघर्ष से संबंधित शिक्षा को रखा। कैन और उसके वंश का निराशाजनक इतिहास एक दृष्टांत था जो प्रमाणित कर सकता था कि यदि पापी के लिए जीवित रहने की अनुमति दे दी जाती तो क्या परिणाम होता। परमेश्वर की सहनशीलता ने दुष्टों को उनके पाप में और भी निर्भक और उद्धत बना दिया। कैन को दी गई दंडाज्ञा के 15 दशकों के पश्चात सृष्टि ने अपराध और प्रदूषण से भरी धरती में उसके प्रभाव और उदाहरण का फलवंत होना देखा। ये प्रकट किया गया कि परमेश्वर की व्यवस्था की अवज्ञा करने पर मृत्यु की दंडाज्ञा न्यायसंगत और दयावान थी। जितना ज्यादा समय मानव पाप में व्यतीत करता, वो उतना ही परित्यक्त होता जाता। अनियंत्रित दुष्टता के कार्यकाल को घटाकर और जगत को कठोर हुए आक्रमणकारियों के दुष्ट प्रभाव से स्वतंत्र कराकर पवित्र दंडाज्ञा श्राप के बजाय आशीर्वाद प्रमाणित हुई। शैतान हजारों स्वांगों में प्रबलता के साथ परमेश्वर की सत्ता और स्वभाव का गलत प्रतिनिधित्व करने में कार्यरत है। वह विस्तृत सुव्यवस्थित योजनाओं को अपने छलावे में पकड़े रखने के लिए प्रयत्नशील है। परमेश्वर वो एक जो अनंत और सर्वज्ञानी है, अंत को प्रारंभ से देखता है और पाप से संबंधित उसकी योजनाएं दूरदर्शी और विस्तारपूर्ण थीं। उसका उद्देश्य केवल विद्रोह का दमन करना ही नहीं था, बल्कि समूचे जगत को विद्रोह का स्वभाव बतलाना था। परमेश्वर की योजना उसके न्याय और कृपा को दिखाते हुए बुराई से संबंधित व्यवहार में उसके विवेक और उसकी धार्मिकता को प्रमाणित करते हुए स्पष्ट हो रही थी। अन्य ग्रहों के निवासी धरती पर हो रही घटनाओं को अत्यंत रुचि से देख रहे थे। जल प्रलय से पूर्व संसार की अवस्था में मसीह के प्रभुत्व को अस्वीकार करने में और उसकी व्यवस्था को टालने में उन्होंने लूसीफेर के शासन प्रबंध, जिसका संस्थापन उसने स्वर्ग में करने का प्रयत्न किया, के परिणाम को सोदाहरण देखा। जल प्रलय पूर्व संसार के उद्धत पापियों में उन्होंने उस प्रजा को देखा जो शैतान के अधीन थी। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। उत्पत्ति 6:5। हर एक मनोभाव, आवेग और कल्पना पवित्रता, शांति और प्रेम के ईश्वरीय सिद्धांतों से असंगत था। ये भयंकर दुष्टता परमेश्वर के रचित प्राणियों पर से पवित्र व्यवस्था के नियंत्रण को हटा देने की शैतान की योजना के परिणाम का उदाहरण थी। महान संघर्ष की प्रगति में स्पष्ट हुए तथ्यों के माध्यम से परमेश्वर शासन संबंधी अपने नियमों के सिद्धांतों को सोदाहरण बतलाएगा, जिन्हें शैतान और उसके छलावे में आए लोगों द्वारा झूठा ठहराया गया था। उसके न्याय को अंत में संपूर्ण जगत की स्वीकृति मिलेगी, लेकिन तब तक विरोधियों के बचाए जाने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। जैसे जैसे परमेश्वर की श्रेष्ठ योजना संपूर्ण पूर्ति की तरफ अग्रसर होती है, परमेश्वर समस्त सृष्टि की स्वीकृति और समर्थन अपने साथ लिए चलता है। विद्रोह के उन्मूलन के अंतिम चरण में भी ऐसा देखा जाएगा कि उन सब ने जिन्होंने पवित्र नियमों का त्याग किया है उन्होंने मसीह के विरुद्ध युद्ध में शैतान का पक्ष लिया। जब इस संसार के राजकुमार का न्याय होगा और उनका भी जो उसके साथ जुड़ गए थे उसी की नियति के भागीदार होंगे, और समस्त सृष्टि दंडाज्ञा के साक्षी के तौर पर घोषणा करेंगी, तेरे मार्ग सच्चे और धार्मिकता से भरे हुए है, सभी जातियों का राजा। प्रकाशित वाक्य 15 आयत 3।